शांति। आज फिर से बाबा मिलन का आखिर वो दिन फिर आ गया। तो बाबा मिलन का चौथा टर्न है। तीन टर्न में हम फुल चार्ज हो गए और आज फिर से चार्ज हो जाएंगे। ओवरफ्लो होकर वो करंट बहता रहना चाहिए। जब तक ओवरफ्लो नहीं हुए तब तक आगे दूसरों को करंट जाएगा नहीं, इसलिए ओवरफ्लो होना बहुत जरूरी है। तो हम सब आत्माएं ज्ञान सागर के कंठे पर बैठकर ना केवल उसको निहार रही हैं, बल्कि ज्ञान सागर के अंदर डूबकर उसके गहरे प्यार का अनुभव करते हैं। संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए कितने प्रकार के यत्न करते हैं, यात्राएं करते हैं, भक्ति पाठ पूजा करते हैं, लेकिन उसमें विशेषता ये होती है कि उसमें उनकी तड़फन बनी रहती है। जो लगन होती है वो कम नहीं होती है, खूब लगन होती है। और भगवान को ढूंढने के प्रयास में जितना मर्जी कष्ट भी झेलना पड़े, समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन उनकी तड़फन में दिन प्रतिदिन इजाफा होता रहता है और उस तड़फन में उनका प्यार भी बढ़ता रहता है भगवान से। वो अलग बात है कि वो उसको जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्यार में बिना देखे आंसू बहाते रहेंगे, उसके प्रति खूब टाइम देंगे, संबंधों से भी कोई याद करते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते बहुत रस है, क्योंकि भक्ति मार्ग की भावनाएं भी कम नहीं है, बहुत प्रगाढ़ भावनाएं होती हैं। एक अंदर में एक कष्ट पैदा होती है उनके अंदर, है जी, रास चलती रहती है। रास वाले खत्म हो जाए, लेकिन रास उनकी चलती रहती है। तो जो वो भावनाएं हैं वो ज्ञान मार्ग में भी होना जरूरी है, लेकिन यहां वो भावनाएं हैं ज्ञानयुक्त भावनाएं हैं, यहां समझ के साथ है। नहीं तो ज्ञान मिलने के बाद भावनाओं को कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है, क्योंकि ज्ञान मिल गया, समझ आ गई, लेकिन जो तड़फन है वो भक्ति में ज्यादा होती है। तो उसी तड़फन को बरकरार रखने के लिए हमें भी अपनी भावनाओं को कम नहीं होने देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग के गीत भी कम नहीं है वो भी, इसलिए सुनो। जब भी अगर ऊपर नहीं ऊंची होती है मन की अवस्था, तो वो गीत सुनकर अपने आप को खुश रखो। तो बाबा मिलन का हम फिर से भरपूर फायदा लेंगे, अपने आप को फुल चार्ज करेंगे और उस मिलन का अनुभव करने के लिए हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कई दफा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से उस उन स्मृतियों को धूप और पानी देने से वो ताजा हो जाती है। तो सारे दिन में आज हमको क्या क्या करना है और जो हमको करने के लिए दिया गया है उसको फिर से कम आज के दिन अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि टीचर का प्यार तभी रहता है अगर स्टूडेंट थोड़ा बहुत होमवर्क करता है, नहीं तो टीचर ध्यान नहीं देगा। अगर होमवर्क नहीं करता है तो डंडा मारेगा, आंख दिखाएगा, पढ़ाने में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा उतना, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, देखाएगा नहीं टीचर उस तरफ, सब उसका प्यार कम हो जाएगा। लेकिन बाबा तो ऐसा टीचर है जो हर बच्चे के तरफ देखता है, हर बच्चे का कल्याण चाहता है। बाबा कहते मेरा लास्ट बच्चा भी है, वो भी बहुत बहुत भाग्यशाली है, कम से कम भगवान को तो पहचाना, एक बार भी दिल से कहा मेरा बाबा तो वो भी बरसे का हकदार है। तो ये तो बेहद का टीचर है। दुनिया वाले टीचर को पता नहीं होते बच्चों का भविष्य कैसा होगा, लेकिन हमारा जो टीचर है उसको तो हमारे भविष्य के प्रति पूरा विश्वास है, फेत है, निश्चय है कि ये बच्चे क्या बनने वाले हैं, और पहले भी थे ऑलरेडी, ये तो केवल रिपीट हो रहा है। तो बाबा बेहद का टीचर है, उसका दिया हुआ होमवर्क भी हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारी अवस्था को हमेशा ऊंच बनाए रखता है, ना केवल हमारी अवस्था को बल्कि जो भी हमारा वातावरण है, हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें भी एक नया जोश उमंग उत्साह भरता है। तो बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया था? हाँ, उसने बाबा में कहा था कि टाइम फिक्स करो, क्योंकि जब तक हम अपना मंजिल क्लियर नहीं होती है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता है, तब तक हम यात्रा पर सही तरीके से सजग नहीं रहते हैं, कभी किया कभी नहीं किया। अगर हमको टाइम निर्धारित है कि इस समय पर हमको वहां पहुंचना है, तो उसी तरीके से हमारे फिर लक्षण भी, हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उसी अनुसार चलती हैं। तो बाबा कहते अपने अपनी दिनचर्या अनुसार टाइम फिक्स करो मनसा सेवा के लिए, क्योंकि आखिर वो भी तो आपके भाई बहने हैं। घर में किसी को तकलीफ होती है तो पूरा परिवार उसके पीछे पड़ जाता है, उसी तरह हम बेहद के परिवार में रह रहे हैं, ये पूरा संसार अपना बेहद का परिवार है, भले कोई भी कैसी भी आत्मा है, लेकिन सब भाई बहन अपने हैं। जब तक ये मानसिकता हमारे मन में पैदा नहीं होती है, तब तक फिर उनके प्रति हम टाइम नहीं देते, दूरियां बनी रहती हैं कि इनसे हमको क्या लेना देना है। तो अपने परिवार समझ के हम दूसरों की सेवा सहज कर सकते हैं, और अपने परिवार के प्रति सेवा करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है, सहज काम होता है वो। जैसे पड़ोसियों के लिए काम करना मुश्किल लगता है, लेकिन अपने घर का काम पहले उसको प्राथमिकता देते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता का काम क्या है, जो संसार की आत्मा नहीं कर सकती है, बाबा कहते मनसा सेवा से उनको दान दो। कौन सा दान बोला था? शक्तियों का दान, और बाबा ने कहा था खुशी का दान दो, खुशी का वरदान दो। तो क्या हमने ये उम्र किया है? इसलिए बाबा ने कहा ना, हाथ उठाओ जिसने किया था पिछली मुरली भी, अगर थोड़ा भी किया होगा तो चलो फिर भी हो सौभाग्य। तो आज का दिन हमारे हाथ में है, वो तो डेली होमवर्क है। हाँ, तो आज के दिन में हम फिर से वो अच्छी तरह से होमवर्क कर लें ताकि शाम तक वो होमवर्क हमारा पूरा हो जाए, नहीं तो हमें वो लाना नहीं देना पड़े कि हमारी तो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। जैसे चार दोस्तों की कहानी है, कौन सा टायर खराब हुआ था, लास्ट में फंस गए जाके। वो बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं कि बाबा मैं तो भाई बिजी था, ये प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, बहानेबाजी। लेकिन टीचर भी तो कम होशियार नहीं है, सोचेगा बहानेबाजी तो बहुत है। बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी आती है, कला, ये बहाने करने की बाजी, बहानेबाजी। इसमें बच्चे होशियार हैं, इसमें बाजी मार ली है बच्चों ने। लेकिन जब धर्मराज की बाजी आएगी तो सब बाजियां फेल हो जाएंगी फिर हमारा बाजा बच जाएगा। तो हमको सारे दिन में आज फिर से उस होमवर्क में बिजी रहना है। और हमने देखा अगर हम वो होमवर्क करते हैं तो उसकी उपस्थिति की महसूसता होती है कि वो हमारे अंग संग ही है, क्योंकि हम उसके कार्य में लगे हुए हैं। और जिसके कार्य में कोई लगा रहता है तो उसकी नजर स्वतः रहती है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे कोई काम दिया है और उस रास्ते से आप दिन में तीन चार बार गुजरते हैं और आपने बताया कि ये तीन चार दिन में काम हो जाना चाहिए, तो आप जब भी उस रास्ते से गुजरेंगे तो नजर जरूर पड़ेगी कि मेरा काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, मेरा काम हो रहा कि नहीं हो रहा है। उसी तरह से बाबा ने जो हमको होमवर्क दिया है, अगर हम उसमें लगे रहते हैं तो उसकी नजर स्वतः हमारे ऊपर पड़ती रहती है। वो शक्तियों की अनुभूति, महसूसता, उसके प्यार की फीलिंग, वो गहरी फीलिंग, वो स्वतः होती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा आज की मूल्य में अगर कोई ग्रहचारी बैठती है तो दृष्टिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा की कितनी ऊंची भावना है आज की मूल्य में। कोई बच्चे चले जाते हैं कथंती सुनंती कथंती भगंती, फिर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन बाबा फिर भी कहते हैं फिर उठो पुरुषार्थ करो। 8-10 वर्ष के बाद भी अच्छे अच्छे बच्चे चले जाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं उठो पुरुषार्थ करो। पिकनिक करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, साइड सीन में फंस जाते हैं चलते चलते, ऐसे ऐसे सीन आते हैं कि पुराने संस्कार खींच के ले जाते हैं, फिर भी बाबा की भावनाएं कम थोड़ी होती है। भले वो अलग बात है कि पद नीचे हो जाएगा, प्रजा में चले जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन बाबा का दृष्टिकोण हमारे प्रति कितना ऊंचा है। तो इसी तरह से हमारा भी दृष्टिकोण उतना ऊंचा बना रहना चाहिए हर आत्मा के प्रति, और उससे पहले तो स्वयं के प्रति। क्योंकि जब तक हम स्वयं के कल्याण के प्रति सजग नहीं होंगे, दूसरों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। जब तक हमने स्वयं को व्यर्थ से मुक्त नहीं किया है, दूसरों को व्यर्थ करने की प्रेरणा दे नहीं सकते। तो स्वयं के प्रति भी हमको उतना सजग रहना है जितना बाबा हमारे प्रति सजग है। कदम कदम वो हमारे प्रति कितनी ऊंची भावनाएं रखता है, ये भावनाएं होने के बाद बावजूद भी, उन भावनाओं से बाबा हमको अवगत कराते हैं, वो उनके बावजूद भी हम उतना समय नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं ना चाहते व्यर्थ में फंस जाते हैं फिर भी। लेकिन फिर भी आप देखिए उसके बाद भी मन में तो आता है ना कि व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। वो आज की मुरले में है, बाबा कहते मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी बड़ाई किस लिए, तो ड्रामा में बंधा हुआ हूं। आज बाबा की निर्माणता देखो कितनी है। तो हम थोड़ा सा भी होमवर्क करें तो हमें अपने पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अहम आ जाता है, या अपनी भावनाओं के उसमें बह जाते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती हैं। तो हम देखेंगे सारे दिन में आज क्या क्या करना है। एक तो सोल कॉन्शियसनेस स्थिति का हमको सारे दिन में अटेंशन रखना है, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ का आधार है, बेस है, फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन अगर हमारा मजबूत है तो सारा ज्ञान स्वतः हमारी बुद्धि में ठहर जाता है, तो स्मृति निरंतर बनी रहती है। आज भी बाबा ने कहा ना कि बाप आत्मा आत्माओं से बात करते हैं, मुरली में सेंटेंस है, बाप आत्मा आत्माओं से बात करते हैं। लेकिन हमारा जो देह के प्रति इतना लगाव हो गया है, दिखाई देता है भले दी, लेकिन अंदर में जो हमारी कॉन्शियस होनी चाहिए, सोल कॉन्शियस, जो बाबा कहते देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, जो आंतरिक कॉन्शियस है वो हमारी सोल, आत्म चेतना वो हमारी निरंतर बनी रहनी चाहिए कि हम इस देह के संसार से निकलकर अभी आत्माओं के संसार में जी रहे हैं। अब हमको वापस लौटना है, यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है, इस देह रूपी घर से अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने हैं। इस देह से बहुत लगाव कर लिया, ये तो हमको टेम्परेरी किराए पर मिला हुआ घर है और किराए के घर पर हमारा पूरा कब्जा नहीं रहता, परमानेंट नहीं है, मालिक निकाल देता है, तो रावण भी हमको निकाल देगा इससे। इस देह रूपी घर से निकलकर हमको अपना जो हमारा असली घर है, स्वीट होम, परम धाम, शांति धाम, जो हमको बुला रहा है, जो हमने गीत सुना, आ लौट के आजा मेरे मीत, तो ये तो दो तरफा गीत है। ऐसा नहीं कि हम बाबा को बुला रहे हैं, बल्कि बाबा हमको बुला रहा है अभी वतन में, आ जाओ। बहुत इस संसार में हमने खेल खेल लिया, बहुत सारे साइड सीन कर लिए, अब हमको अपने घर वापसी करनी है। तो पहली बात है कि हम घर वापसी तभी कर पाएंगे जब हम घर जाने योग्य हो जाएंगे, वो हमारे में योग्यता होगी। घर में कैसे रहेंगे जाएंगे, प्योर आत्माएं हैं जी, पावन होके जाएंगे। आज भी बाबा ने कहा ना, बाप है चुंबक, लेकिन कैसा चुंबक है, प्योर। कल की मुरली में था, कल की मुरली में था, प्योर। तो उसी तरह से हमको भी उतना प्योर बनना है, हैं जी। स्नान करके घर जाएंगे, अगर स्नान नहीं किया तो बाबा फिर करवा देगा। हाँ, कल है ये मिशन है पतितों को पावन बनाने की, ईश्वरीय मिशन। तो उस मिशन में हम पूरी तरह संलग्न रहें, तो हमें स्वयं को भी उतना प्योर बनाना है, उतना पावन बनाना है, पवित्र बनाना है, ताकि हम वहां बाय इज्जत जा सके। नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। धर्मराज की बात भी थी ना कल की मुरली में, थी धर्मराज की स्लोगन में थी। तो धर्मराज की सजाओं से बचेंगे तब जब जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे तो श्रेष्ठ जीवन बनेगी, तो धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे, एक ही और स्लोगन था। तो पहली बात है हमको पूरा दिन सोल कॉन्शियस स्थिति की अनुभूति में रहना है, वो हमारी ओरिजिनल नेचर है वो, तो हमको ओरिजिनल नेचर से उतरना नहीं नीचे। दूसरी बात, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, परमात्मा अभिमानी स्थिति। जैसे किसी का कोई रिश्तेदार बहुत बड़े औहदे पर होता है, पद पर होता है, या कोई मिनिस्टर होता है, तो उसको स्वतः उसका नशा रहता है, उसकी स्मृति रहती है, और जो उसके अंग संग रहने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि इसका रिश्तेदार जो है बहुत ऊंचे औहदे पर है, तो इसके काम स्वतः हो जाएंगे, इससे मिलेंगे तो काम स्वतः हो जाएंगे। उसी तरह हमारी अंदर में एक कॉन्शियस बनी रहनी चाहिए कि निरंतर हम उसके साथ में हैं। जो बाबा ने बोला कंपेनी और कंपनी, शायद कल के मुरली में आएगा, कंपनी और कंपेनियन दो चीजें हैं विदेशियों को, है जी, कंबाइंड। हाँ, कंबाइंड की मुरली वरदान, कल के वरदान में आएगा कंबाइंड की स्थिति, अव्यक्त मुरली में भी बोला है पिछले इसमें। वो बाबा ने कहा था अगर शिव शक्ति अपने को समझो, ये स्मृति में सदा रहता है, तो माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बन जाएंगे। हाँ, मन बुद्धि आपके कंट्रोल में ना, अगर बाप का साथ है, मन बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ये हो ही नहीं सकता है। सभी समस्याओं का कारण बाबा ने एक ही बात बताई थी, उसका समाधान है अपने को हमेशा राजा बनकर रहो, राजा बनकर समझ के चलते रहो, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो और कल की मुरली में जो वरदान है उसमें भी बाबा ने कहा कि जो बच्चे कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं, माया आ ही नहीं सकती है, परेशान कर ही नहीं सकती है, वो निरंतर योगी सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। अगर माया के बाण बार बार लग रहे हैं तो हम बाबा से कहीं ना कहीं विमुख हैं। इसलिए दूसरी बात है हमको सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहना है। माया पहला भक्त बनेगी कब, माया पहला भक्त बनेगी जब हम बाबा के साथ कंबाइंड बनकर हमेशा रहेंगे, संगम पर माया पहला भक्त बनेगी। तो दूसरी बात है सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में रहना है, तो हम उसका अनुभव कर सकेंगे। तीसरी बात जो कल एक बताई थी इन्होंने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो बहुत गहरी बात कल हो हमको और थोड़ी समझ में आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संसार में बहुत उपयोग करते हैं, लेकिन वो सब करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ब्रह्मा बाबा ने भी किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लेकिन कहां पर, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए। इसलिए बाबा बार बार संदेशी को ऊपर भेजते थे कि जाओ ऊपर जाके देखो बाबा ऊपर वाला बाबा कैसा है। जो कैलाश बहन जी कहते थे नीचे आके कि बाबा ऊपर वाला तो बाबा बहुत अच्छा है, आप तो इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। तो दीदी ने उस समय पास में बोला, दीदी पास में खड़ी थी, तो दीदी ने बोला मुठ्ठी क्या बोल रही है तुम, बाबा ये वाला ठीक नहीं है। बोला नहीं बाबा ऊपर वाला बाबा बहुत अच्छा है, आप इतने अच्छे नहीं हो। तो माना बहुत चमकीले हैं कैलाश दीदी की, देखो कितनी वो प्योर शुद्ध भावना, जो जैसा है वैसा बताया आके। तो फिर बाबा बार बार ऊपर भेजते थे, क्योंकि कैलाश तो उस समय बहुत छोटे उम्र के थे कैलाश दीदी जी। तो देखो बाबा ने भी उस स्वरूप को ग्रहण करने के लिए, अपनी संपूर्ण अवस्था को ग्रहण करने के लिए उसका आह्वान किया, उसको बार बार देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसमें जगत का कल्याण समाया हुआ है। हमारे लिए बाबा वो एग्जाम्पल बन गया, अनेक आत्माओं का हित समाया हुआ है, जनहित है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संसार में जो उपयोग करते हैं वो अपने कल्याण के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे तो निस्वार्थ सेवा में उपस्थित हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात सारे दिन में हमको अपनी संपूर्णता का आह्वान करना है। जो हमारी संपूर्ण अवस्था है, चाहे वो अव्यक्त वतन की फरिश्ता स्थिति है, चाहे वो हमारा देवत्व का स्वरूप है, चाहे वो हमारी परमधाम की ओरिजिनल बीज रूप अवस्था है, चाहे वो हमारा संगम का अंतिम समय कर्मातीत अवस्था का है, हाँ स्वर्ग का भी आह्वान करते हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल अवस्थाएं हैं, जो उच्च कोटि की अवस्थाएं हैं, उनका हम बार बार सारे दिन में आह्वान करें, उसकी अनुभूति करें, सर्वशक्ति की अनुभूति करें, उनका आह्वान करें। वो हमारा जो संपूर्ण रूप कौन सा भक्ति मार्ग में जो इष्ट देव का है, पूर्वज का है, जिन इष्ट देवों से संसार की भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिन इष्ट देवों में भक्त भगवान को अनुभव करते हैं, तो उन अवस्थाओं का भी हमको अनुभव करना है, अपनी संपूर्णता का बार बार आह्वान करना है, भगवान का आह्वान करना है, जिसने हमको संपूर्ण बनाने के लिए इतना सुंदर ये समय दिया, मौका दिया, इतनी ऊंची शिक्षाएं दी, सावधानियां दी, श्रीमत दी, तो उसका आह्वान करना है जी। उसने ठेका उठाया हुआ है कि इनको मैं ठाकुर बना के ही छोड़ूंगा, कसम खाई है भगवान ने भी कि हमें ऊंच बनाने की, तो हम भी उस कसम पर पूरा उतरे, कसमें बाधे निभाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे। हाँ टेंशन, हाँ अटेंशन देने उस पर। और दूसरा एक वरदान जो हमको बाबा ने कहा है, इस होमवर्क ये भी दिया था, टेंशन फ्री। बाबा ने कहा था टेंशन फ्री बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। किस बाबा ने कहा, हिम्मत है, कौन हिम्मत रखता है ये वरदान लेने में। कितनी सुंदर महावाक्य थे, चैलेंज किया था बाबा ने कि सारे दिन में कोई टेंशन नहीं। अगर किस कोई कहे ब्राह्मण परिवार में कोई टेंशन के नाम निशान दिखाई ना दे, तो हम बाबा ने कहा अपने चलन और चेहरे से भी खुशी का वरदान दो, खुशी की खुराक का अनुभव हो, चलते फिरते वो सर्विस हो। तो ये थी तीसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमको क्या क्या आह्वान करना है, बहुत दफा इसकी चर्चाएं भी हुई है, फिर से हम उस पर दोहराएंगे उसको, और उस पर खरा उतर कर उस अवस्था का अनुभव करेंगे और दूसरों को कराते रहेंगे। नेक्स्ट चौथी बात है, बहुत सारी बातें अवॉइड करनी है आज के दिन, विशेष तौर पर बहुत सारी बातें अवॉइड कर देनी है जो हमारी स्थिति को डगमगाती हैं। कौन कौन सी, एक तो आवाज में आना अवॉइड करना है, अर्थात आवाज में तो आना है लेकिन बिना मतलब के आवाज में नहीं आए, कम से कम आज के दिन भी। हम वैसे तो अपने ब्राह्मण जीवन में आना ही नहीं है, क्योंकि जितना हमारी धारणाएं मजबूत हैं उतनी हमारी स्थिति भी ऊंच होगी। तो वो बातें हमको आज के दिन अवॉइड कर देनी है, जहां हमारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, जहां हमारी एनर्जी खत्म होती जा रही है, हमारा पुरुषार्थ कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो आवाज में आना, या बिना मतलब के कहीं देखने के लिए खड़े हो जाना, या कहीं सुनने के लिए खड़े हो जाना, या किसी के बारे में चर्चा करना, वातावरण को खराब करना, ये सारी बातें हमारे मन को बहुत भारी कर देती हैं और हम उड़ान नहीं भर पाते हैं फिर। और उसका परिणाम जब भी हम मेडिटेशन में राजयोग का अभ्यास करते हैं, बैठते हैं, तब मन उड़ान नहीं भरता है, वो संकल्प हमको बांध के रखते हैं। तो हमको वह उन सब चीजों को अवॉइड करना है जो हमें कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में बाधक बनी हुई, हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनी हुई है। और भी हम अपने अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार स्वयं को जांच सकते हैं कि क्या चीजें अवॉइड करें जिनकी हमको जरूरत ही नहीं है, जो हमने पकड़ के रखी हुई है बिना मतलब के ही है, तो इन चीजों को अवॉइड कर देना है। और क्या करेंगे आज के दिन में? हाँ, संकल्पों को समेट के रखना है, क्योंकि बताया ना हमको अभी निकलना है वापस, घर वापसी है, रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी के लिए सारा हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो ही हम वापसी कर पाएंगे। अगर हमारा हिसाब किताब चुकतू नहीं है तो बिना हिसाब किताब के कोई जाने नहीं देगा, भले हम दुनिया के किसी भी कोने में जाके छिप जाएं, लेकिन हिसाब किताब हमको वहां बांध के रख देगा। इसलिए अपने हिसाब किताब को भी पूरा करके वापस लौटने का पूरा पुरुषार्थ करना है। और नेक्स्ट है, सारे दिन में फीलिंग रखना है कि हम अम्ब्रेला के नीचे अर्थात छत्रछाया के नीचे हैं, भगवान की छत्रछाया हमारे ऊपर है। और छत्रछाया किस किस रूप में? बहुत सुंदर हम योग का प्रयोग कर सकते हैं, चलते फिरते परमात्म शक्तियों की छत्रछाया के नीचे हम चल रहे हैं, निरंतर उसकी शक्तियां मुझ आत्मा में समाहित होती जा रही हैं, उसकी सारी की सारी शक्तियां मेरी कर्मेंद्रियों में समाती जा रही हैं, और मुझे स्वराज्य अधिकारी की फुल फीलिंग जैसे महसूस हो रही है। क्योंकि जब तक हम स्वराज्य अधिकारी अधिकार अर्थात जिसके पास अधिकार नहीं होता है तो दूसरों पर भी वो हुक्म भी नहीं चला पाता है। हुक्म वही चलाता है जिसके पास कुछ अधिकृत है, जिसको किया गया, अधिकृत किया गया है, जिसको साइन लेटर दिया गया है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल कौन होता है? आके कोई नहीं बैठ जाता ऐसे, जिसको गवर्नमेंट लेटर देती है उसी के पास में सारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वो जो कहेगा वही सब पूरा स्टाफ करेगा। उसी तरह से हम अधिकार भी तभी प्राप्त कर पाएंगे जब परमात्म शक्तियों का अधिकार हमारे हाथ में होगा, तो हम उसके अधिकारी हैं। बाबा तो कहते हैं तू बच्चे अधिकारी हो, है ना, भिखारी नहीं हो, अधिकारी हो। तो सारे दिन में हमको इस फीलिंग में भी रहना है कि परमात्म शक्तियों की छत्रछाया के नीचे हम पल रहे हैं, उसकी छत्रछाया के नीचे हम कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं। ना केवल मैं छत्रछाया में हूं बल्कि सभी परमात्म छत्रछाया में है, क्योंकि दूसरों को भी सेवा करनी है ना। तो सबको हम सारे दिन में इस फीलिंग में महसूस करें और कराएं कि सभी परमात्म शक्तियों की छत्रछाया में चल रहे हैं, पल रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, सुख अनुभव कर रहे हैं, पापों से मुक्त हो रहे हैं, सर्वात्माओं के पापभस्म हो रहे हैं, ये फीलिंग करनी है। फिर दूसरी वरदानों की छत्रछाया है, जैसे निरंतर बाबा कहते हैं ना बहता झरना है ना, पिछले संडे की भी शायद मुरली में झरने की बात आई थी, तो निरंतर वरदानों का झरना वैसे सर्वात्माओं के ऊपर बह रहा है। योग के छोटे छोटे प्रयोग करें तो आत्मा जैसे उसमें तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। आज भी था ना संतुष्टता का, क्या था आज की मुरली में, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही कौन है? डबल लाइट। और कल भी संतुष्टता का स्लोगन था कौन सा? जो आज्ञाकारी हैं वो दुआओं के पात्र हैं, और जो दुआओं के पात्र हैं वही सदा संतुष्ट रहते हैं। तो सारे दिन में हम संतुष्टता की अनुभूति तभी कर पाएंगे जब हम उसकी छत्रछाया में अनुभव करेंगे, तृप्त होंगे, भरपूर होंगे। और जो भरपूर हैं वो बांटे बिना रह नहीं सकते हैं। और किया महसूसता करेंगे, उसके वरदानों की महसूसता, परमात्म शक्तियों की महसूसता, जैसे परमात्म गुणों का झरना बह रहा है। जब हम महसूस करेंगे तो दूसरों में भी हमको गुण ही दिखाई देंगे, नहीं तो अब गुण की आंख बंद नहीं होगी, अब गुण ही दिखाई देते रहेंगे। और वो तो रहेंगे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत नहीं जाएंगे सबके अवगुण, लेकिन जब तक हमारा नेत्र जो है, हमने अपने नेत्रों पर गुणों का चश्मा नहीं पहना है तो दूसरों के अवगुण ही दिखाई देंगे। अब बाबा को तो पता है ना कि सब में क्या क्या भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी बाबा के क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अब वो तो हमको ही पता होता, हम मीठे या कड़वे हैं, सारे दिन में किसको कितना नीम पिलाते हैं या कुछ और पिलाते हैं, लेकिन नीम भी फायदेमंद होता है, दवाई 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 का काम करती है, इसलिए खाद का काम करती है। तो किसी के अवगुण, अगर वो अवगुण हमें कुछ उत्तेजित कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए खाद का काम कर रहे हैं, हमारी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए वो हैं। लेकिन हमको उन अवगुणों को स्वयं के चित्त पर नहीं धरना है, क्योंकि दूसरे के लिए निमित्त नहीं बनना है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, उस अवगुण को, उस दिन सूरज भाई ने क्लास में बहुत अच्छी बात कही थी, एक परसों की क्लास में, कि देखिए जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जब हजम हो जाता है बिल्कुल, तो फिर वो अपने आप काम करता है, और भोजन करने के बाद हमको उसकी स्मृति थोड़ी रहती है, वो भूल जाता है ना, फिर तो हम नए भोजन की तैयारी करते हैं। उसी तरह जो हमने अवगुण किसी का देखा वो हमको हजम कर लेना है, और अगली बार हम उस आत्मा से मिल रहे हैं तो उस अवगुण की याद भी नहीं आनी चाहिए। कितनी सुंदर बात है वो, लेकिन कितनी ऊंची अवस्था है ये। तो हमको किसी का अवगुण हमारे हाँ स्मृति तो आएगी आएगी, क्योंकि बड़ी ऊंची अवस्था है कि वो विस्मृत हो जाना है, लेकिन लंबे समय की साधना के बाद वो विस्मृति हो जाएगी जब हम अपनी नेचर को, वो भावनाएं ऊंची हो जाएंगी जब हम अपनी स्मृति को निरंतर ऊंच बनाते जाएंगे, उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो वो हमारी स्मृतियां चेंज हो जाएंगी। फिर हमको भले सूक्ष्म थोड़ा सा फ्लैश होगा लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे कि मेरा काम ऐसा सोचना नहीं है, दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो वैसा है जो भगवान का कर्तव्य है, जो भगवान की भावना है वही हमारी भावना है, जो भगवान का दृष्टिकोण है सबके प्रति वही हमारा दृष्टिकोण है। तो हमारी भावनाएं चाहते ना चाहते भी ऊंची बनी रहेंगी। जैसे आज डॉक्टर है इंजेक्शन लगाता है तो उसको बीमारी का तो सब पता होता है ना, लेकिन इंजेक्शन तो फिर भी लगा के उसको उपचार करता है, उसको शफा देता है, उसको उमंग साथ देता है। उसी तरह हम सब भी दूसरों की बीमारियों को जानते हुए उनको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट करें, ना कि गहरा जख्म हुआ किसी को और ऊपर से एक और मार दिया, ऐसा नहीं। तो उन गहरे जख्मों को, जैसे हमारे जीवन में भी कितने गहरे जख्म थे, लेकिन उन गहरे जख्मों को हरा भरा करने के लिए या उनको शफा देने के लिए भगवान ने कैसे मलम पट्टी करके हमारा उपचार किया है, किस प्रकार की ज्ञान की औषधियां दी है, ज्ञान की संजीवनी बूटी सुंघाई है, ज्ञान के इंजेक्शन लिए हैं, कितना उपचार किया, धीरे करते 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 आखिर एक एक बच्चे के प्रति भगवान कितना समय देता है, कितनी ऊंची भावना है उसकी। तो हम भी उसी के बच्चे मास्टर भगवान है। उस दिन बताया था ना बाबा ने, तुम बच्चे भी मास्टर भगवान हो, मास्टर भगवान समझ के चलो। तो हम जब हम स्मृति से नीचे गिर जाते हैं तो हमारी हालत दयनीय हो जाती है, फिर माया अपना आक्रमण कर देती है, फिर उठना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने कहा जितनी मर्जी ग्रहचारी हो लेकिन दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाओ, अपने आप को संभालो, फिर उठो, फिर दौड़ो, फिर चलो, फिर चढ़ो, उठते रहना है, रुक नहीं जाना है, क्योंकि ये रास्ता लंबा है लेकिन है बहुत सहज अगर अटेंशन है तो। जैसे अटेंशन से हम नीचे उतरेंगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाता है, इसलिए अटेंशन रख के चलते रहना है। और क्या अनुभव करेंगे सारे दिन में, हाँ परमात्म दुआओं की शतर छाया हमारे ऊपर है, उसकी अनुभूति करनी है, उसके आशीर्वाद, उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा, उसका रहम, उसकी दया, ये सारी शतर छाया हमको अनुभव करनी है कि सारे संगम पर केवल एक छोटा सा समय हमको हमारे हाथ में आया। पिछली 24 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारा एक सेकंड बहुत 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 कमाई कराने वाला है। तो हम दो बातें बाबा ने बताई थी कि ये विशेष दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी है, कौन सी दो बातें थी, समय और संकल्प। बाबा ने कहा बच्चों का संकल्प जो है अशुद्ध संकल्प चलते हैं, व्यर्थ कम चलते हैं, अशुद्ध संकल्प आते जाते हैं, अशुद्ध संकल्प नहीं चलते हैं, हाँ व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो संकल्प और समय ये बड़ा कीमती खजाना है, इस पर हमको विशेष अटेंशन रखना है ताकि हम उस परमात्म प्यार का अनुभव सहज रूप से कर सकें। और प्रकृति के बारे में बाबा ने बताया था कि तुम्हारे लिए प्रकृति, दुनिया की मनुष्य आत्मा उसे तंग हो रही है बहुत, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, तुम बच्चे जानते हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छे से अच्छा होगा, प्रकृति के बारे में बाबा ने बताया था। और हमारा भाग्य का सिमरन किया था, शेर रेखाएं बाबा ने भाग्य की देखी, तो क्या सारे हमने जो दिन बीच में टाइम बीता तो उन रेखाओं को हमने देखा अपने मस्तक पर, कि मेरे मस्तक पर चमकती दिव्य दिव्य सितारे की चमकती रेखा चमक रही है। हमारे नैनों में क्या था, नैनों में क्या था, और मुख में क्या था, हाथों में क्या था, कदमों में क्या था, हाथों में क्या था, ज्ञान खजाना, और नैनों में भी ज्ञान था स्नेह, और पांव में हर कदम में पद्मों की रेखा समाई हुई है। तो सारे दिन में ये भी हम महसूसता करें, वास्तव में मुरली सारी एक योग का प्रयोग ही होता है, अब वो दिखाई थोड़ी देती है, लेकिन हम अपने संपूर्ण रूप को इमर्ज करके देखें अपने मस्तक पर, ताकि वो ज्ञान हमारे साथ चिपक जाए एकदम, वो स्वतः काम करता रहे। जैसे कोई चीज सामने चिपका दो तो सबको दिखेगी, चिंगम नहीं चिंगम दूसरे को भी चिपका देगी तो हमारे मस्तक पर शिक्षाएं वो चिपकी रहनी चाहिए ताकि दूसरों को स्वतः याद रहे, कराना ना याद पड़े। कई बार होता हम देखते हैं जो योग युक्त होकर रहते हैं बाबा के बच्चे, तो उनको देखने से हमारे संकल्प बदल जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, जबकि सामने वाला कुछ कहता नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली, उनकी व्यवहारिकता, उनका सोचना, उनका बोलना, समझ संपर्क में आना बदल चुका हुआ सारा। तो उनको देखते ही हमारे स्मृतियां चेंज हो जाती हैं। तो उसी तरह से हम अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं, हमें देखकर स्वतः सेवा होती रहे, स्वतः सेवा करने के लिए जाना ना पड़े, बल्कि स्वतः सेवा। जैसे सूरज के पीछे को भागता थोड़ा नहीं है, सूरज के पीछे को तो भागता है, या सूरज किसके पीछे भागता है, वो स्वतः हो रहा है। हनुमान जी ने तो मुख में रख लिया था सूरज को तो वो स्वतः ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो उसी तरह बाबा ने जैसे पिछले संडे बताया था, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो हम वही लक्की सितारे हैं, वही सफलता के सितारे हैं। सफलता के सितारे की निशानियां बताई थी, कौन कौन सी? रात को दिन करने वाले, और हाँ जी रोशनी फैलाने वाले, और हाँ वो तो पत्थर थे दूसरी बात, लेकिन सफलता के इस तारे की निशानियां थी। वो कभी अभिमान नहीं होगा उनको, अपनी सफलता का अभिमान नहीं होगा, नम्रचित, निर्माण, मधुर होंगे वो, है ना। वो सफलता के गुणगान, स्वयं की सफलता का गुणगान नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे उनकी सफलता का गुणगान करेंगे, बाप की महिमा के गीत गाएंगे। तो कदम कदम पर बाबा की शिक्षाएं अगर हमको समय पर याद आती हैं, ज्ञान धन है, इसको खर्चना है। भले धन किसी के पास जितना मर्जी पड़ा है, लेकिन उसको खर्च ही नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कंजूस है बिल्कुल, मनहूस जिसको बाबा कहते हैं, तो उस धन का क्या फायदा है। तो हमें अथाह संपत्ति मिली है, भंडार मिला है, अखुट भंडार है। आज की मुरली में भी है ना, कल था कारों का खजाना, काल की मुरली में था। तो हमको इतना अथाह भंडार मिला, हमको उसको यूज करते रहे, ना केवल स्वयं के प्रति दूसरों के प्रति भी, तो समय पर वो काम में आएगा। पैसा पड़ा हुआ है और विपत्ति मुसीबत हमारे सिर पर आन खड़ी है और हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो जैसे होते हुए भी नहीं है। वही हमारी हालत है कि कितना हमने ज्ञान सुन लिया आज तक, कितनी मुरलियां, ढेरों मुरलियां सुन रही हैं, लेकिन हम अपने प्रति कितना उपयोग कर रहे हैं उसको। समय पर स्मृति में आ रहा है, जब कोई समस्या मुसीबत आती है तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने देखा कई कई बार कोई फोन करते हैं, मुसीबत आ गई तो उस समय फोन कर रहे हैं, तो इतने सालों से ज्ञान हमको कहां गया। इसलिए दूसरों को आधार बनाने के लिए फिर सहारा ढूंढते हैं, इसकी समस्या का समाधान वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। अरे हमारे पास ही समाधान है, हमें इतना पैसा दे के रखा हो भगवान ने, उसको यूज करो। पैसा खर्चने पर कितनी खुशी होती है, अपने लिए खर्चने है तो यूज करना उसका। और पैसा होता है पास में तो उसका नशा अपने आप रहता है, चेहरे पर दिखाता है कि साहूकार आदमी है, इसके पास माल पानी है। तो हमारे पास, सबके पास कितना माल पानी है, अविनाशी संपत्ति है। संडे की 24 तारीख की बाबा मुरली में बोला था, माल पानी बन गया अविनाशी बाप है, इसलिए अविनाशी प्राप्ति है तुमको मिली हुई। तो नशा भी अविनाशी रहना चाहिए, है ना। 24 तारीख की मुरली में था, अविनाशी बाप मिला है, अविनाशी प्राप्तियां हैं तुम्हें, तो नशा भी अविनाशी रहना चाहिए। तो नशा हमारा कहां कहां खंडित न हो जाए, अव्यभिचारी याद आने वाले मुरली संडे की। तो बाबा ने याद कील की देखी, याद पवित्रता और सेवा, तो याद किलकिर अटूट है, सदा सीधी है, या कहीं कहीं खंडित हो जाती है। तो नशा भी हमको सदा रहना चाहिए, डबल नशा रहना चाहिए, परमात्म प्यार का नशा, परमात्म प्राप्तियों का नशा, ब्राह्मण परिवार का नशा। इतने ऊंच कुल के हैं हम, सारे संगम पर, सारे कल्प में ये ऊंच से ऊंच हैं, ब्राह्मण चोटी हैं, पूर्वज हैं। देवताओं को भी ये खुशी नहीं रहेगी, देव जो ब्राह्मणों को खुशी है। तो अपनी खुशी के भी हमको गुणगान करने की, हमको कितनी बड़ी खुशी मिली है, कितनी बड़ी प्राप्तियां मिली है, और क्या अटेंशन रखेंगे सारे दिन में। हाँ जी, हाँ, आज हम शिव साजन से मिलने जा रहे हैं, तो सारे दिन में सजनी बनकर रहना है। मैं पार्वती हूँ वो शिव है, मैं सीता हूँ वो राम है, और प्रीतम मान मिलो, गाना गाते रहना है। लेकिन वो मन ही मन में गाना है, अगर ऐसे गाते रहेंगे चलते फिरते वो भी अच्छा है, दूसरे समझ जाएंगे ब्राह्मण आत्मा समझ संपर्क में आने से कि आज ये उसके प्यार में भिगोई हुई सजनी है। हैं जी, आज सजनी बन के फिर अगले दिन में वो छेड़ेगा आपको इसलिए अंदर ही अंदर गीत गाने तो अच्छा रहेगा। सारे दिन में उसके साथ का, हाँ बताया ना, परमात्म शत्र छाया उसके हाथ का साथ, क्यों उसका हाथ ना मेरे सिर से टच है जैसे, है ना, ओह अनुभूति करनी, महसूसता करनी चलते फिरते, या मैं उसकी उंगली पकड़ के चल रहा हूँ, हाँ हाँ जैसे आसपास बातें करते हुए चले उससे, है ना, मन ही मन ऐसे नहीं हाथ मारते रहे, कईयों का होता है, जैसे कई बार होता है फोन भी करते हैं ना, इधर से फोन करते तो हाथ भी चलाते हैं, अभी सामने वाले को हाथ थोड़ा दिखता है, वो एक आदत बन गई है। तो इसी तरह हमारी भी ऐसी आदत ना हो कि वो ऐसे ऐसे हाथ मारते रहे उसको तो सारे दिन में। हाँ जी, हाँ, उसकी गोद में बैठने का अनुभव करना है या उसकी उंगली पकड़ के चलते रहना है, उसका वरदान याद स्वयं के सिर पर अनुभव करना है। हाँ, उसका शुक्रिया, शुक्रिया तो पिछले संडे की मुरली में कर दिया था, शुक्रिया मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। तो सारे दिन में उसका शुक्रिया भी करना है ना, क्या से क्या बना दिया। हम अपने जीवन को देखें, क्या जीवन में क्या था हमारे जीवन, एकदम कौड़ी तुल्य से आज ही है ना पेनी बन गया था, पौंड बना दिया, आज की मुरली में पेनी से पौंड है जी, पत्थर बुद्धि से पारस बना दिया। तो हमारे जीवन कितना ऊंच बन गया है, अपने जीवन को देखना है कि संसार की आत्माओं की तुलना में हम कौन से स्टेज पर खड़े हैं, अभी कितनी ऊंची स्टेज है। और हमारे अपने कर्तव्य भी कितने बड़े बड़े कर्तव्य हैं जो हमको स्वयं भगवान ने सौंपे हैं, और भगवान को हम आत्माओं को फेत है कि ये आत्मा इन कर्तव्यों को पूरा करने वाली है। तो उन कर्तव्यों पर खरा उतरने के लिए सारे दिन में अपने कर्तव्यों की स्मृति रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरे कर्तव्यों में हम इतना लिप्त हो जाए कि हम अपनी अवस्था को भूल जाए या भगवान के कर्तव्य को भूल जाए, उसके साथ को भूल जाए, उसको किनारे कर दें। तो सारे दिन में स्मृतियों को पानी देते रहना है ताकि हमारी अवस्था निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, ऊंची होती जाए, ऊंची होती जाए, क्योंकि अभी वापस लौटने का टाइम आ गया है। तो स्वयं के प्रति पूरा सजग रहना है। तो कुछ एक बातें देखी, सारे दिन में एक सोल कॉन्शियस स्थिति की महसूसता करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसका अनुभव करना है, बढ़ाते रहना है बार बार। दूसरा सुप्रीम सोल कॉन्शियस की स्थिति। तीसरा डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल कौन सी है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अवॉयड कौन कौन सी बातें करनी है। सारे दिन में कुछ ना कुछ देखो, चिंतन करते रहो करते रहो, तो आदमी उसमें बिजी रहता है, टाइम का पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। बहुत सारे होमवर्क फिर उसके करने के बाद लगता है ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो हमारी तड़प बढ़ती रहनी चाहिए, ये नहीं करना कि ये सारा जो बताया अभी जो चर्चा हुई इतना किया तो पूरा हो गया, नहीं, इसके ज्यादा और भी करना है, और भी करना है, और भी करना है, और भी करना है, बढ़ते जाना आगे, क्योंकि काम बहुत पड़ा है अभी। ऐसा नहीं कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा काम, बस मिल लिया बाबा से तो पूरा हो गया काम, टेंशन बनी रहनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, और काम आएगा आज, वो भी याद करना है, कल की संडे की मुरली है वो भी याद करनी है, आज की मुरली है, आज बाबा ने कहा ना अब तुमको घर जाना है, इसलिए क्या करो, देही अभिमानी बनो, आज की मुरली में। और कल था सदा ऊंच पद पाना है, तो क्या करो, कल सारे दिन में क्या, मैक्सिमम दिन में हमको मुरली भूली रही, थोड़ी याद रही, फिर हम शाम को जब योग में बैठे तो एक सेंटेंस हमको याद आया और उसमें हमारा योग बहुत अच्छा हो गया। और यही था, ऊंच पद पाना है तो क्या करो, भावने का सदा अपने आप को श्रृंगारे हुए रखो, अपने आप को श्रृंगारे हुए रखो। मुरली की मेन हेड में तो हमको उसी में आया, तो हमने उस सेंटेंस को ही पढ़ के देखा कि सारे दिन में इतना भी नहीं याद रहा, लेकिन जब वो सेंटेंस याद आया तो स्वतः उसकी याद में खो गए एकदम, पता नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। तो होमवर्क तो करते रहना है, इतना होमवर्क का बोझ अपने सिर पर लेके ढोते रहना है, दूसरा बोझ अपने आप ही उतर जाएगा। अगर हम परमात्मा होमवर्क का बोझ रखेंगे ना, तो भगवान इंजेक्शन लगाता रहेगा हमको बार बार, हम ठीक होते जाएंगे। ओ जी, हाँ, वो उस चाबुक में मजा है, उस चाबुक में बहुत मजा है। जैसे स्कूल में मार कैसे पड़ती थी टीचर से, है ना, हैं जी, जम जम, हाँ, छड़ी लगाई छम छम और विद्या वे जम जम, जम जम का पानी कहते ना, एक है ना। तो सारे दिन में हमको अटेंशन रखनी है, इस ज्ञान में रमण करते रहना है, परमात्म प्यार में खोए रहना है, सोए नहीं रहना है, खोए रहना है। बाबा ने कहा ना आंखें खोल के रखो, उस दिन की मुरली में था परसों, तो ज्ञान की आंखें हमेशा हमारी खुली रहनी चाहिए, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हम मन को काम देना है। अच्छा, ओम शांति।
आ जा मेरे नी।